नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण आपके साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो लेकर आता है बहुत सारे इश्यूज जिस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे होते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ बैठे होते हैं और उन विषयों पर हम करते हैं यहाँ पर बैठकर खूब सारा डिस्कशन। आपकी राय जानते हैं जो कि आप हमें भेजते हैं 8010781078 पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो है कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें। जी हाँ, विषय का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जी हाँ, एक पति पत्नी के बीच में किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं वो हैं मुकेश मलिक जी, जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हैं, और हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर जैन, वो भी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हैं मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ बैठी हैं हमारी आरजे दीक्षा भास्कर भाटिया, और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं इकविंदर एस सिंह जी, हमारी कम्युनिटी मेंबर। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
थैंक यू
जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम मुकेश मलिक जी के पास जाएंगे और हम सिर्फ उनसे बहुत ही सिंपल एक लाइन में जानना चाहेंगे, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, इससे आप क्या समझते हैं?
किरण, अगर इस एक लाइन से हम मतलब निकालना चाहें तो इसका मतलब यही है कि बदलाव ही जिंदगी है जी। और जहाँ पे बदलाव या ठहराव आ जाता है, बदलाव नहीं होते हैं लोग, वहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं
जी। और यहाँ पर बात हो रही है कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जी हाँ, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य, और यहाँ पर हमने विषय लिया है कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें। जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि बदलाव जो है जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो इसी बदलाव पे एक सवाल इकविंदर जी से। इकविंदर जी, आप खुद एक औरत हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक औरत का क्या रोल होता है इस कंपैटिबिलिटी को कायम रखने में।
देखिए, सबसे पहले तो किरण, मैं आपको एक तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड बड़ा हॉट मसला जी डिस्कशन के लिए लिया है।
एक्चुअली मैम, हस्बैंड वाइफ का मसला हमेशा हॉट होता है।
वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। एंड हमसे ज़्यादा आई थिंक जितने भी हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ ऑल दिस टुडे। एंड सबसे पहले यही आपको कहना चाहती हूँ कि अगर हम एक लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं फॉर हर होल लाइफ जिसे कहते हैं, और एक तरह का एक मेंटली हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होते हैं
जी,
विच मीन्स लाइक मेंटली वी आर कमिटिंग इनटू ईच अदर फॉर बेरिंग ईच अदर
जी।
और एक दूसरे को जब ये बेरिंग का सवाल आ जाता है, इसमें अपने आप में ही बदलाव इज इक्वल टू दिस
जी।
अब एक दूसरे को जब इकट्ठा भी एंटर इनटू मैरिटल ब्लिस जिसे कहते हैं, मैरिटल ब्लिस का नाम पूछ देते हैं, बट एक्चुअली हाउ मच इट इज अ ब्लिस डिपेंड्स अपॉन अस
जी।
और जब आपने मुझे एक बताया, आई मीन आपने बोला है कि ठीक है, एज अ लेडी, एक औरत के व्यू पॉइंट से मैं क्या कह सकती हूँ, ये है कि देखिए, आजकल जो सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए जो एक मैरिटल जो हम एंटर करते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर मैरिज, उसमें मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, एक एडजस्टमेंट जो एक लेडी की होती है शायद थोड़ी ज़्यादा होती है देन एज कम्पेयर टू अ मेल। She gets married, goes into another family, and अभी recently तो ये हो गया है कि कभी कभी वो surname adopt करती है, लेकिन उसकी choice है, नहीं करना चाहती, it's all right, लेकिन उसको एक अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में अपनी एक पहचान बनानी होती है, एक अपना मुकाम हासिल करना होता है, उसके लिए उसकी तरफ से जो adjustment होती हैं, I feel they are much more than what a husband.
हमारे साथ एक और फीमेल है, हमारी आरजे दीक्षा। दीक्षा, यहाँ पर जिस तरह से इकविंदर जी ने कहा कि जहाँ पे कंपैटिबिलिटी को आगे तक ले जाने की बात है, वहाँ पर औरत का जो योगदान होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो औरत को ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी मैरिड हैं, तो एडजस्टमेंट करते वक्त किस किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए?
देखिए, एडजस्टमेंट जब करते हैं शादी के बाद तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है एक लड़की की लाइफ में, तो आप ये खुद समझ ही सकते हैं, जो मैरिड नहीं है, जिसकी भी शादी होने वाली है, उसको पता ही है कि सब कुछ चेंज होगा, नाम से लेकर आपके पहनावे तक, आपके घर, आपका बेडरूम, आपके छोटी छोटी चीज़ें, आपका कबर्ड, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है
जी।
और उस चेंज के साथ आते हैं ढेर सारे रिश्ते अलग अलग, जिम्मेदारियां अलग अलग, तो यहाँ पर जब भी आप एडजस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप एडजस्ट करें, बिल्कुल एडजस्ट करें, लेकिन दबें बहुत ज़्यादा नहीं। हमारी इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस जो डाउरी के आते हैं या फिर किसी और तरीके के जो केसेस आते हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट समझते समझते लड़कियाँ ये भूल जाती हैं कि उनके साथ गलत होगा,
कि उनकी भी अपनी कोई पहचान है जिसे वो खोती जा रही हैं।
और बहुत अगर आप गाँव की तरफ जाएं, इंटीरियर्स की तरफ जाएं, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत सालों से चला आ रहा है और आज का नहीं है, कई
सालों से है
कि लड़की ने एडजस्ट किया, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ साथ उस पर कई बार बहुत गलत अत्याचार भी हुआ। और इसे घर वाले भी कई बार एडजस्टमेंट का नाम देते हैं कि नहीं तुम एडजस्ट करो, तुम्हारा हस्बैंड अगर बाहर किसी के साथ अफेयर कर रहा है तो तुम एडजस्ट करो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपनी शादी को कैसे निभाती हो।
जी,
लोग यही कहते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड को नहीं संभाला तो गलती तुम में होगी। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट आते हैं, फिर उसके बाद सास से झगड़ा हो गया, नन से झगड़ा हो गया, तो भी कई बार ये आता है बहू में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, होता है कई बार बहू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई बार फैमिली को भी एडजस्ट करना पड़ता है, सिर्फ हस्बैंड नहीं पूरी फैमिली को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि एक नया इंसान, एक नया फैमिली मेंबर आपकी फैमिली में ऐड हो रहा है। बिल्कुल,
तो ये बात यहाँ से यही निकल कर आती है कि ताली जो है वो एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, आपको दोनों हाथों को मिलाना ही पड़ता है, चाहे वो आप शेक हैंड करें, ताली बजाएं। और जैन जी से मैं आप पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जहाँ पे कंपैटिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वहाँ पर दीक्षा ने कहा कि ये कंपैटिबिलिटी के नाम पर समटाइम्स हम एक्सप्लॉयट करते हैं वुमेन फोक को, वहाँ पर जब हम एक्सप्लॉयटेशन वाली बात होती है तो फिर ये कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले वाला जो टॉपिक है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं गलत हो जाता है।
Well, I won't say कि कहीं ना कहीं गलत हो जाता है necessarily, but I would like to point out that times have also changed. If we look at the kind of divorce rates that we have say in the last 10 years compared
to prior to that. So they are increasing or decreasing as per your records?
In my opinion, as there's more financial independence achieved by women,
yeah,
and there are less areas where they're being kept out of. I think having that independence to make real decisions and being able to find the balance of their own self and the roles which they are, you know, have to take over.
Fine.
I think that is where it's something where the flexibility and adaptability should be there up to a point. Beyond that, if it is exploitation, then definitely a woman has to say, not anymore, I will not take it, and put a foot down.
लेकिन जिस तरह से आप मुझसे कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टैंड्स हैं लेडीज़ के वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, अब वो फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, लेकिन मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हुई हैं, एक्सप्लॉयट करने के तरीके बदले हैं, लेकिन शायद एक्सप्लॉयटेशन कम नहीं हुआ।
I definitely agree with you. I think emotional exploitation is much more.
Yes.
In many marriages, until a child has been born, a lot of times the man's family feels that, you know, actually the marriage is not yet complete.
Yes.
You know, until then there is still an option of getting out of it and, you know, getting into a second marriage.
Ji.
So yes, a lot is stacked against women, but that doesn't mean the men are all bad. Okay.
बिल्कुल मुकेश जी से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी जैन जी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग होती जा रही हैं वुमेन। मैंने एक बात छोटी सी यहाँ पे रखी कि शायद उनके एक्सप्लॉयट करने के तरीके बदल गए हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वेन इट कम्स टू इंडिविजुअल फैमिली, हस्बैंड है वाइफ है दोनों कमा रहे हैं, लेकिन शायद वाइफ को यहाँ पर, क्योंकि हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वाइफ को शायद अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं स्पेंडिंग ऑफ मनी को लेकर वो उतने नहीं हैं जितने हस्बैंड को हैं। वो जितना पैसा कमा के ला रही है उस पैसे को वो आज भी अपने तरीके से खर्च नहीं करती है। शी हैज़ टू गिव लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस फॉर स्पेंडिंग इवन अ पेनी।
ये बात एकदम सही है किरण जी आपकी, कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जो वुमेन जो फाइनेंशियल स्टेबल हो गई हैं, उससे मैं जैन जी से थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जो फाइनेंशियल अगर वो स्टेबल हुए हैं तो उससे बदलाव का या फिर आपस में दूरियां बढ़ने का कारण उसमें क्यों रहा है?
Well, I would say that it gives women a true choice because still they do not earn their own money. Prior to this, they've been dependent on their parents.
मतलब उनको मौका चाहिए था?
Not mocha chesa, I would say being able to have a true choice. Earlier they are the daughter of their parents, now they are wife to a man. So when do they become themselves? They become themselves when they are financially independent and then can lead the life that they want to. They may still choose to remain with us men, which we are thankful for.
दूसरे तरीके से अगर इसका मतलब निकालूं तो फाइनेंशियल स्टेबल होना एक जो है दिक्कत आ रही है, जो आप कह रहे थे डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं?
No, I would say that because financial stability gives them more choice, families where they are, you know, the women are unhappy, emotional methods are being used to make women move out.
जी, जैन जी और मुकेश जी के बीच में जो ये थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई, यहाँ पर दीक्षा और इकविंदर जी हमारे साथ बैठी, तो सबसे पहले मैं दीक्षा से पूछना चाहूंगी कि दीक्षा, आप इन दोनों की बातों से कितना सहमत हैं और कितना नहीं?
देखिए, बातें दोनों की अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पर डेफिनेटली जैसे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं तो एक लेडी के पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा भी अर्न कर रही हूँ और मेरी फैमिली का माहौल ठीक नहीं है तो इट्स बेटर टू मूव ऑन.
यस,
उस रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पर मुझे खुद को खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि अक्सर किताबों में भी ये कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े लोग ये सेइंग भी कह चुके हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है तो जिंदगी को सही से जियो. तो आजकल की जो लेडीज हैं, सिर्फ शहरों में, हम गांव की बात ना करें, कुछ परसेंट लेडीज इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं कि वो बाहर निकलना चाहती हैं. तो वहां पर एडजस्टमेंट करते करते जब इंसान थक जाता है तो बाहर निकलता है. आज से 10-15 साल पहले के अगर आप केसेस उठा के देख लीजिए, अगर आप फैमिलीज की तरफ मुड़ जाइए, तो वहां पर आपको ये फील होगा कि इंडिपेंडेंट इतनी नहीं थी लेडीज 15-20 साल पहले, इतना फर्क नहीं था. वो नहीं अलग होती थी, वो नहीं डिवोर्स लेती थी. लेकिन अब जब लेडीज इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, उनकी अर्निंग पावर्स बढ़ गई हैं, अपने बच्चे को वो खुद संभाल सकती हैं, लॉ में इतने बदलाव किए गए हैं कि डिवोर्स के बाद भी काफी प्रॉपर्टी मिल जाती है, काफी कुछ फैसिलिटीज मिलने लगी हैं, तो ये स्टेप ज्यादा आ गया. तो यहाँ पर एडजस्टमेंट जो होता है वो अब थोड़ा कम होता जा रहा है. अब हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर जरा सा भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ईगो बहुत हाई हो गए हैं,
तो लॉज हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं इन द फेवर ऑफ
लेना ज्यादा अच्छा लगता है
कि हाँ, डिवोर्स लेना थोड़ा इजी भी हो गया.
स्पेशली अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो वहाँ पर ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये प्रॉब्लम आती है ईगो की, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट.
मैं यहाँ पे
जी
थोड़ा सा बात करना, जैसे दीक्षा ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो शादी होती है वो दो लोगों के बीच की बजाय दो परिवारों के बीच में होती है.
जी,
तो अगर उस बात को, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, अगर दोनों ध्यान में रखें और फिर अगर अर्निंग दोनों की हो रही है, दोनों को मिलाकर अगर अपने घर को चलाएं, तो मेरे साथ बहुत बेहतर रहेगा.
बिल्कुल,
और किसी तरह दिक्कत आने की संभावना कम हो जाती है.
जी, मुकेश जी की बात बहुत ही परफेक्ट है. दीक्षा ने यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी बताया है इस बात का कि जो एडजस्टमेंट करने की जो हमारी विल है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब हमारे पास थोड़ी सी पावर आ जाती है. यहाँ पर दोनों ही तरह की बातें सामने आई हैं. इकविंदर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो रही हैं लेडीज, तो क्या ये भी एक रीज़न है सेपरेशन में, डाइवोर्स केसेस में?
वेल किरण, आई टोटली आई एम ऑफ द लिटिल डिफरेंट ओपिनियन कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही सेगमेंट जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लिया जाए फॉर हार्ट्स टू चेंज और फॉर एनी चेंज कैन हैपन इन अ मैरिटल थिंग. देखिए, अगर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक वुमन में आती है, बदलाव आ रहा है, इसके साथ मेच्योरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है. जब तक आप एक तरह से मैच्योर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है, इफ़ आई एम ऑल्सो अर्निंग, माई स्पाउस ऑल्सो इज अर्निंग, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डेवलपमेंट ऑफ माई फैमिली, ऑफ आर फैमिली.
जी,
ये चीज़ें दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है. और ये इट डिपेंड्स कि हम एक दूसरे को कितनी स्पेस दे रहे हैं एज फार एज नॉट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंसर्न बट इमोशनल इंडिपेंडेंस इज कंसर्न. हम एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितना ग्रोथ, ये डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस.
जी,
ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, एक अंडुलेटिंग ग्राफ जिंदगी भर रहेगा. आपको देखना है कि उसमें आप किस तरह का बदलाव हमेशा रहेगा. आप एक दूसरे के साथ कितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रख सकते हैं.
जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात की है इकविंदर जी ने. मैं जैन जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या इनफ है एक रिलेशन को हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में आगे तक चलाने के लिए, या फिर आजकल के दौर में, या फिर पहले भी अगर हम देखें तो शादियों में अगर हमें कंपैटिबिलिटी बढ़ानी है या फिर हमें एक साथ चलना है, तो उसके लिए हम वेट करते हैं कि एक बच्चा हो जाए.
आई डोंट नो अबाउट द एक बच्चा हो जाए, बट आई वुड डेफिनेटली से कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रांग रिलेशनशिप.
ऑफ कोर्स, बट आई एम अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो नीड, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या ये काम कर रहा है आजकल सोसाइटी में?
इट्स डेफिनेटली देयर, डेफिनेटली. बियॉन्ड दैट यू आल्सो नीड ट्रस्ट.
Yes.
You know, so you need communication, trust, openness, okay? And I think an ability to look at and understand the role expectation you have from your partner, from your spouse. And are you looking at what you also have to do? Or are you only looking at what you expect from the other person? So is it that a woman says, the man has to earn all the money or treat me like a princess, why should I have to work? And why can't I have 3 servants and 4 cars? Okay. Or does the man have an expectation that his standing in society or status will be defined by the kind of woman he has standing next to him? Okay. So each have expectations from each other. They need to communicate it to each other, but they also have to look within and say, mera kya role hai isme?
Yes.
How much do I have to change?
Mm-hmm.
Not just how much the other person has to change. That is one point. The second is, in India, we tend to marry early. And my personal belief is that for a lot of us, we actually find ourselves much later. We are still growing up and we, you know, grow up even after marriage.
Sir, early ka kya matlab aapka?
In terms of maybe mental age, and especially for us men. Okay. And the third thing which I'd like to say is that I think for a lot of men, in some ways we marry our mothers, you know, and our wife is actually a lot like our own mother, and we exchange one for the other.
Would I like to interrupt?
Certainly, please.
My wife is like my mother. I mean, that means you already have formed your perception that my wife has to be like my mother.
Absolutely. I'll give you an example. There's always, let's say the wife cooks something.
Mm-hmm.
In the man's mind, it is this as tasty as the way my mother makes it?
Yes.
So where I'm saying is being able to have that openness and say the same dish can be as tasty, if not tastier, even if it's made by someone else in a different way.
So that way, even the daughter-in-law can say that my mother used to cook so well, I would like to cook a different dish for you. Oh, I hope you like it.
Exactly. So communication. I'm glad we are in agreement.
उसी बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि वही बदलाव जो है दोनों तरफ से आना चाहिए, एक सोच पे ना चले.
जी, यहाँ पर बदलाव को लेकर बहुत सारी बातें हमारे सामने आई है, कंपैटिबिलिटी को लेकर कि फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंस है वो भी मैटर करती है, घर में एक बच्चा भी मैटर करता है शादी के टाइम पे, ये भी मैटर करता है कि जो उसके बेटर हाफ है या किसी लड़की का या लड़के का, तो उसका क्या स्टेटस है, क्या वो मेरे साथ खड़ी या मेरे साथ चलती हुई, या सोसाइटी में मैं उसको लेके जाऊँ तो मेरे साथ अच्छी लग रही है या नहीं. और एक और चीज़ निकल कर आई है कि क्या वो मेरी माँ जैसी है या नहीं. लेकिन ये सारी बातें जो हैं हम एक तरफ करेंगे, और अभी बात करेंगे हम अरेंज मैरिज और सेल्फ अरेंज मैरिज, लव मैरिजेस, इन पर कि इनमें क्यों डिफरेंस आ जाता है कंपैटिबिलिटी को लेकर. मेरे साथ हैं मुकेश मलिक जी, जैन जी, दीक्षा और इकविंदर सिंह जी. आप चारों जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हमें कंपैटिबिलिटी को लेकर, हस्बैंड वाइफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए इस पर भी हम बातें करेंगे. लेकिन हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हस्बैंड वाइफ की हैं वो अलग अलग रिलेशन को लेकर हम बात करेंगे, एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिजेस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इकविंदर जी से पूछना चाहूँगी कि इकविंदर जी, आपको क्या लगता है कि एक लड़का जो कि अरेंज मैरिज में है, एक लड़का जो लव मैरिज में, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती हैं?
ऑफ कोर्स, वेदर इट्स अरेंज मैरिज और वेदर इट्स लव मैरिज इज इक्वल टू मैरिज ओनली.
यस,
तो मैरिज में तो देखा जाए तो इट इज योर ओन कमिटमेंट दैट मैटर्स. सो ये होता है कि अगर आपका लव मैरिज है तो मे बी यू नो द पर्सन लिटिल मोर, लेकिन whether it's love or whether it is arranged, the person that you discover after marriage is a totally different person. I'm not saying totally, but maybe partially also.
Yeah.
Because क्या होता है कि पहले बड़ी हंकी डोरी होती है, whether you have arranged marriage also, लड़का लड़की मिलते हैं, सबसे best अपनी assets दिखाते हैं, and you feel yes, you are stepping into a land, a fairy land.
जी,
तो इट्स नॉट रियली अ बेड ऑफ रोजेस. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड ऑल दैट.
जी,
हम लोग यही सर कहते हैं कि भाई एक तरह का लड्डू है, खाया तभी नहीं भी खाया तभी वंचित रह जाते हैं. सो बट इट्स एक जो एसेंशियल कॉम्पोनेंट हमारी जिंदगी का, जो मैरिज हम जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू बदलाव, जो कि आज का हमारा डिस्कशन है. वेदर इट इज लव, वेदर इट इज अरेंज्ड, एक बदलाव तो देखिए एक दूसरे को जान करके, पहचान करके आना ही चाहिए.
यहाँ पर जो मेरा सवाल है ये पूछना ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी एक अरेंज्ड मैरिज है, उसको पता है कि वो एक जो लड़की है वो मेरे माँ बाप की पसंद की है, हमारे घर में आई है, तो उसमें हम कमियाँ जो हैं बाकी परिवार की तरफ से जो है वो कम से कम निकाली जाएंगी. क्योंकि होता है स्टार्टिंग में कि पेरेंट्स क्योंकि खुद लेकर आए हैं तो वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर क्योंकि हमारी अपनी पसंद है तो ऑलरेडी एक 50% काम वहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है. लेकिन जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो वो लड़का जो है टोटल अपने रिस्क पे एक लड़की को घर पे लेके आ रहा है, और वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी ऑकर होती हैं जो कि बहुत डिफरेंट होती हैं अरेंज मैरिज से. वहाँ पर कंपैटिबिलिटी को सफ़र करने के लिए इतने सारे टास्क हो रहे होते हैं आसपास कि वहाँ पे शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लगता है लड़के की थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है.
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है ये दोनों वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, एक एडजस्टमेंट और एक कंपैटिबिलिटी. यस, even if you are a little adjusted with each other, but then when you are alone, you are compatible with each other, says it all. ठीक है. अब जब आपका मुद्दा आया कि लव मैरिज में एक जो बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज़ टोटली एट, अपने आप को आंसर करना पड़ता है, एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि देखिए जस्ट बिकॉज मैंने अपना लड़का अपने लिए ढूंढा है, अपनी लड़की अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढी है, तो जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे या जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेकिन एक हमें एक तरह का लाइसेंस नहीं मिल जाता अगर अरेंज मैरिज करते हैं, दैट एक फैमिली उस समय चुप रहती है. अगर फैमिली ने बोलना है, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, इफ़ एनीबडी हैज़ टू फाइंड फॉल्ट्स विद फाइंड फॉल्ट्स एनीवेज. सो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ योर एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी एंड योर एटीट्यूड. आप कितना सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, उसके बाद में अपने आप को कितना दूसरों से एक्सेप्ट करवा सकते हैं और कितना आप एक्सेप्ट करते हैं दूसरों को, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. यस यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल, यस. लेकिन उसके बाद में एक आपस की जो, जैसे मैंने बोला, इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन जो हो जाती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर. मैच्योरिटी लेवल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अपने आप ही दूसरे में आ सकते हैं.
जी दीक्षा, तुमसे मैं ये जो सवाल है पूछना चाहूंगी कि कंपैटिबिलिटी की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाली बात जो है बार बार बोली जा रही है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा टाइम जो है आपस में होना बहुत ज़रूरी है, कि थोड़ा सा भी आप टाइम आपस में स्पेंड करेंगे तो शायद एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन निकल के आएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट पे, तो हम सब जानते हैं हमारी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर भी आपस में बात करने का इतना टाइम जो है वो नहीं है, और अगर इंडिविजुअल फैमिलीज हैं तो बोथ आर अर्निंग, दे बोथ आर गोइंग फॉर जॉब आउटसाइड, एंड व्हेन दे कम बैक एट होम दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो जाती हैं, तो वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो फैक्टर है कैसे काम करेगा.
किरण देखो, जो अभी हम फैमिलीज देखते हैं, कोई न्यूक्लियर है कोई जॉइंट फैमिली है, इनमें अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं और हर किसी को मिलते हैं. एक फैमिली तो ऐसी होती है जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, जहाँ पर एक घर में 6-7 लोग रह रहे हैं, दादा दादी मम्मी पापा, 2 बच्चे, मेड भी है, बहुत सारे लोग हैं. वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको हर किसी को टाइम देना होता है. दूसरे टाइप की जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर हैं. अब न्यूक्लियर में ऐसी फैमिली जहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, जैसा आपने बताया, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास भी वक्त नहीं है तो वो भी बात नहीं कर पाते. लेकिन एक और टाइप के कपल होते हैं जिनके पास वक्त भी होता है, निकाला जाए तो कुछ भी निकल आता है वक्त, आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी की कमी की वजह से बात ही नहीं करना चाहते.
They don't have any content to talk.
हाँ, उनके पास वक्त है, उनके पास टॉपिक्स नहीं है, और टॉपिक्स हैं भी तो वो बात नहीं करना चाहते. दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू ईच अदर.
जी यहाँ पर जैन जी ये जो बात दीक्षा बोल रही है कि दे आर नॉट रेडी टू टॉक, दे आर हैविंग सफिशियंट टाइम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बट दे आर नॉट रेडी टू टॉक, यहाँ पर एक ही बात जो है फैक्टर मुझे नजर आता है, दैट इज ईगो, ईगो प्रॉब्लम.
See, I think beyond ego, we need to take a step back and see that when we are looking at love marriages and comparing them with arranged marriages, one is frequently there may be an age factor difference. In a love marriage, especially if it's classmates, so typically they would be around the same age. In an arranged marriage, you probably would have an age gap between the boy and the girl, typically with the boy being somewhat older and then probably a little more mature. Okay. The second thing is that with arranged marriages, you would tend to have similarity in culture and background between the two families, typically speaking.
Yes.
You know, or the same religion, for example.
Ji, ji.
Whereas in a love marriage, you typically, you know, have something which has begun from rebellion against the family. So you would probably have a completely different background. And therefore, when things go wrong in an arranged marriage, there is still certain amount of a safety net which is there. Because it is a choice which has been made by the family and its two families.
This is what I wanted to ask, yes.
Whereas in a love marriage, when things go wrong, emotionally you are very let down because it is someone you have personally chosen, probably fought with everybody to get married also.
And you are not able to provide her that respect or...
Him or her. Yes. Or whatever is the gap.
Whatever is the gap.
So I think, yes, in India, there is a significant difference between love and arranged marriages and the kind of problems or issues or challenges they face.
Obviously, when it comes to love marriages, then there is a diversity of culture as well, diversity of language as
usually,
well.
Usually.
Yes, diversity of, you know, each and everything. तो वहाँ पर तो पहले ही इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से जो सोच की डाइवर्सिटीज़ हैं वो तो आनी ही आनी है.
But then that's why it's love, no? It's so interesting.
सो इंटरेस्टिंग जी. मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ये सारा जो अभी फ़िलहाल डिस्कशन चल रहा है उस पर आपकी अपनी क्या राय है?
मेरी अपनी राय ये है किरण जी कि जो इकविंद्र जी ने कहा कि दोनों केसेस में अगर हम बात करें सेल्फ अरेंज मैरिज और अरेंज मैरिज की हम बात करें तो दोनों केसेस में जिम्मेदारियाँ जो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियाँ सेम होती हैं, मेरे हिसाब से जिम्मेदारियों में फ़र्क होता है.
जी
अगर हम बात करें अरेंज मैरिज की तो उसमें क्या है जिम्मेदारियाँ बट जाती हैं, जो बढ़ती हैं आपके पेरेंट्स में आपके समाज में. और अगर वहीं लव मैरिज की बात करें उसमें जिम्मेदारी इंडिविजुअली जो लोग जो कपल है जिन्हें शादी की है उनके ऊपर आ जाती है.
जी
और इसके साथ अगर मैं एड ऑन करना चाहूँ तो जो बदलाव की हम बात करें जो टॉपिक हम लेके चले हैं तो मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में जो बदलाव है वो हो सकता है दोनों लोग बदलाव के लिए थोड़ा सा तैयार मेंटली तैयार होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है पहले से
और वो तैयार होते हैं स्टार्टिंग से कि हमें जाके
एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा. लेकिन अगर बात करूं मैं अगर पर्सनल व्यू में अपना दूं तो लव मैरिज में दोनों लोग क्योंकि बहुत पहले से जान रहे होते हैं तो वो सोचते हैं हम क्यों बदलें, एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं उनको, वो कह रहे हैं हम जानते हैं एक दूसरे को पहले से ही तो अब बदलाव की जरूरत क्या है, हम जानते हैं हमें अच्छा लग रहा है तभी हम लव मैरिज करने जा रहे हैं. तो दूसरा मैं सपोर्ट करूंगा दीक्षा जी को कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो तो मस्ट है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, वो चाहिए चाहिए, उसके बिना जो जिंदगी की जो गाड़ी है वो आगे नहीं
वो आगे नहीं चलेगी. जी हाँ, यहाँ पर जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस में, लव मैरिजेस में एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं. और यहाँ पर एक छोटी सी बात और निकल कर आती है कि दो अच्छे इंसान ज़रूरी नहीं है कि एक साथ रहें तो उनकी शादी जो है वो सफल हो जाएगी. इकविंदर जी,
देखिए जहाँ तक हम एक सफलता इन मैरिज की बात करते हैं, अगेन आई वुड कम टू द सिचुएशन के बदलाव के साथ आपको अपने आप को थोड़ा ढालना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है. एंड समाज अभी आज देखिए फास्ट पेसिंग सोसाइटी है, इसमें हर एक कदम पे ऊपर एवरी मिनट एवरी दिस थिंग यू गेटिंग सो मच चेंज. अब आपस में अगर आपने एक दूसरे को समझ लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है विद द सोशल स्ट्रेटा जो कि इतना डाइवर्स आजकल हो रहा है, उसके अंदर रहते हुए अगर आपने आपको एक जिसमें अपने आप को ढाल लिया है एंड यू नो कि अगर हम में से एक दूसरे में अगर थोड़ा बदलाव आ रहा है, आर वी एक्सेप्टिंग ईच अदर एज व्हाट यू वर अर्लियर और व्हाट यू आर नाउ.
जी
सो उसमें अगेन आई वुड से यू नीड टू बी टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली एंड यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग ईच अदर विद द वेव एंड टाइड्स ऑफ टाइम.
ऑफ कोर्स, तो समय जो है वही हर सवाल का जवाब होता है और समय जो है हर रिश्ते को धीरे धीरे ठीक कर देता है अगर हम सब चीज़ों पर सोचना थोड़ा सा कम कर दें और एक दूसरे को समझना थोड़ा सा ज़्यादा कर दें. बस यही छोटी सी समझदारी की बात है जो हम इस विषय के थ्रू आप लोगों को बताना चाहते थे कि अगर रिश्ता पति पत्नी का होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दोनों को ही बदलना पड़ता है, एडजस्टमेंट दोनों को ही करना पड़ता है, चाहे बेशक लड़की अपना घर छोड़ के पति के घर में आ रही हो या फिर पति ने अपना घर छोड़ के लड़की को अलग से इंडिविजुअली कहीं रहना शुरू कर दिया हो. बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में एडजस्टमेंट हो, आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी हो, तो एक दूसरे को समय दीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए और दिल की बात जो है वो खुलकर बताइए ताकि आपके मन में कुछ ना रहे. इसी छोटे से थॉट के साथ आज मैं आप सभी गेस्ट का जो यहाँ पर आए हैं मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया.
धन्यवाद.
थैंक यू.
और आशा है कि आप लिसनर्स को भी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा. वैसे भी हस्बैंड वाइफ का जो टॉपिक जहाँ पर शुरू हो जाता है उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी हम किसी तरह से इसको वाइंड अप कर रहे हैं. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8. मैं थी किरण आपके साथ. फील गुड फील लाइव.